हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, खास करके फर्स्ट ईयर आरजीएनएम और फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट्स का और बाकी सभी विद्यार्थियों का जिनका आज नया साल का एजुकेशन का फर्स्ट डे है। और आप सबके स्वागत के लिए और आपको सबको अभिष्ट चिंतन यानी कि टू गिव यू बेस्ट विशेस, आपके प्रिंसिपल और सब टीचर्स और सब स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मिस्टर मिटबावकर जो हमारे सुपरिंटेंडेंट हैं, हमारे स्पिरिचुअल केयर डॉक्टर संजय परब, स्पिरिचुअल केयर के सब स्टाफ यहाँ उपस्थित है। इसका उद्देश्य एक ही है कि ये सब लोग मिलकर आप लोगों को आपके पढ़ाई के नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामना देना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो शुभकामना का मतलब क्या होता है? शुभकामना का मतलब ये नहीं था कि हमारा धन बढ़े, हमारा सौंदर्य बढ़े, हमारा भौतिक मटेरियल प्रोग्रेस हो। हाँ, शुभकामना का मतलब यह है कि विद्या प्राप्त करने के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऑस्पिशियसनेस यानी कि पवित्रता या शुभ अवस्था, उसकी व्याख्या ऐसे की गई है कि जो अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान की स्मृति बढ़ जाती है, भगवान की सेवा होती है, भगवान के साथ कनेक्शन यानी संबंध प्राप्त होता है, उस स्थिति को भाग्य या शुभ अवस्था कहते हैं, ऑस्पिशियसनेस। तो बिना भगवान के संबंध के कोई चीज़ ऑस्पिशियस नहीं होती है। इसलिए विद्या आरंभ करने के पहले हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनसे ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। तो आप सब लोगों को वो आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए ये सुबह का कार्यक्रम आयोजित किया है। और डॉक्टर संजय परब कहाँ हैं? मेरा ऐसा विचार है कि हर साल 1 अगस्त किसी भी दिन पे हो, उस दिन पे कार्यक्रम होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इससे ये क्लियर बात हमें समझ में आएगी कि हम यहाँ पर किस लिए हैं। इसलिए नहीं कि हमको नर्स बनकर बहुत सारी बड़ी बड़ी तनख्वाह प्राप्त करनी है इसलिए हम लोग नर्स बनना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमको नर्स बनकर गल्फ़ में जाना है, इंग्लैंड में जाना है, वहाँ पर डॉलर में और पाउंड में तनख्वाह लेनी है। सबको हम पूछते हैं आपको नर्स क्यों बनना है, तो वो कहते हैं कि हमको मरीजों की सेवा करनी है, लेकिन वो केवल इंटरव्यू तक सीमित रहता है, उसके बाद में केवल धन प्राप्त करने की इच्छा से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम ये सबको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के नर्सिंग स्कूल में सबको ये बताना चाहते हैं, इफ देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन व्हाइल आई एम स्पीकिंग देन इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। आ जाओ, 15 आ जाओ, कम हियर प्लीज। सुबह क्या कह रहा था? हाँ, तो विशेष करके भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन टिटॉन, व्हाट इज दैट नेम, रोजालिंड एस टिटॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग, इस संस्था में हम लोग सबको ये बताना चाहते हैं कि हर एक भौतिक विद्या के साथ भगवान का अधिष्ठान होना बहुत ज़रूरी है, भगवान के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सारा जो कार्य है वो परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप बिजनेस भी करते हो, पैसा भी कमाते हो, लेकिन भगवान के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपका बिजनेस भी परफेक्ट है। अगर आप गृहस्थी भी चलाते हो, परिवार है आपका, या आप डॉक्टर हो या नर्स हो या प्रोफेसर हो या और किसी प्रकार का व्यवसाय करते हो, सब प्रकार का व्यवसाय अधूरा है अगर उसमें भगवान का कनेक्शन नहीं है। और वही अधूरा व्यवसाय भगवान का कनेक्शन होने से पूर्ण हो जाता है, उसको अर्थ प्राप्त होता है, पर्पज प्राप्त होता है। तो हम सबको अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन भी एक यात्रा है, एक प्रोफेशन है, एक जर्नी है हमारी, एक ओर से दूसरी ओर तक। तो दूसरी ओर जो है वो भगवान होगा तो हमारा जीवन परिपूर्ण है। पहली ओर से सब लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर से अगर भगवान है और हमको वहाँ तक पहुँचना है तो हम सब लोगों को अपने जीवन को भी परिपूर्ण करने के लिए ये भगवान का जो संबंध है वो जोड़ना बड़ा आवश्यक है। तब जाकर आपकी नर्सिंग की पढ़ाई परिपूर्ण होगी, तब जाकर आपका जो नर्सिंग का प्रोफेशन है जिसमें आप मरीजों की सेवा करने वाले हैं वो परिपूर्ण होगा। क्योंकि हेल्थ की जो व्याख्या की गई है उसमें कहा गया है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। केवल फिजिकल मेंटल नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जब हम स्वस्थ रहते हैं चारों दृष्टि से तो हमारा प्रोफेशन, हमारा काम, हमारा विद्या, हमारा कर्तव्य सब परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये शुरुआत भगवान के नाम से की जाती है और वो भी भगवान के नाम के बाद भगवान के जो वचन है उससे की जाती है। तो हम लोग आज भगवद गीता के 10वें अध्याय से 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य ये अध्याय का शीर्षक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामोपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुँच सकते हैं। Those who serve me continuously without interruption with love and devotion, I give them knowledge from within the heart by which they can reach me successfully. इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद है कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, अभी मैं बुद्धि योग की शिक्षा आपको दूंगा। अब उस बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग का मतलब है भगवत भावना में, गॉड कॉन्शियसनेस में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि के द्वारा भगवान के साथ जुड़ जाना। जब कोई भगवत धाम भगवान के घर जाना चाहता है और भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग एक विधि है जो मनुष्य को भवबंधन से यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाता है। प्रोग्रेस यानी उन्नति करने का ये परम लक्ष्य जो कृष्ण भगवान की प्राप्ति है, लोग इसको नहीं जानते हैं इसलिए ये ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। एनीवे, संक्षेप में श्री गुरु का स्मरण करते हुए हम आपको ये प्रयास करेंगे समझाने का कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म होता है उसका तो उसको दिमाग भगवान देते ना, सेरेबेलम, सेरेब्रम, ब्रेन और हार्मोनल ग्लैंड्स, हार्ट, लिवर, सबको प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य बुद्धि जो है वो खाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, संकट से बचने के लिए, सबके पास बुद्धि रहती है वो। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की बुद्धि ये बड़ी विशेष कृपा है। वो कृपा हमें संतों से यानी सेंटली पीपल उनसे प्राप्त होती है। वो हमको वो बुद्धि देते हैं जिससे हम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन उनके साथ में कनेक्शन कर सकते हैं, उसे कहते हैं बुद्धि योग। वो बुद्धि जो भगवान के साथ योग कर देती है, जोड़ देती है। उन्होंने कहा कि तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा के लिए जो व्यक्ति भगवान को याद करते रहता है प्रीतिपूर्वकम, मतलब प्रेम के साथ, कुछ लाभ के लिए नहीं, प्रेम के साथ याद करता है। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझ तक पहुँच सकता है। तो करना क्या है, अगर हम आईक्यू के दृष्टि से बहुत ही बुद्धू होंगे, समझो हमारा आईक्यू बहुत लो है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान वो बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो उनको मिल सकते हैं। ये इसका रहस्य है। इसलिए भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए PhD होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए MD होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर साइंस में या किसी और एरोनॉटिक साइंस में या बड़े बड़े रिसर्च में एटॉमिक एनर्जी में बड़े बड़े विषयों में PhD MSc करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य सामान्य व्यक्ति भी अगर ये इच्छा करता है मन में केवल मुझे भगवान के साथ संपर्क होना चाहिए तो भगवान उसको वो बुद्धि देते हैं जो उसके लिए उनको मिलने के लिए आवश्यक है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं यहाँ से, आपको मेरा स्टेशन जाना है, आपको सीरियसली जाना है वहाँ पर, आप गंभीर हो उस बात पर कि आपको मेरा स्टेशन पहुँचना है और आप निकल गए यहाँ से, तो रास्ते में जिसको पूछेंगे वो आपको बताएगा कहाँ जाना है, कैसे मुड़ना है और कितना देर लगेगा, क्योंकि आपको ट्रेन पकड़ के घर जाना है, आपको पहली बार मीरा रोड में आए हैं। तो जैसे आपके मन में इच्छा पूरी इच्छा आई कि आपको जाना है, वो इच्छा ही आपको मार्गदर्शन भी दिलाएगी, आपको लोग भी मिलेंगे जो आप पूछने पर जवाब देंगे और आपको वो मीरा रोड स्टेशन तक पहुंचा देगी। तो मेन जरूरी क्या है, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मीरा रोड स्टेशन पहुंचना है। हम आज आके पूछेंगे ये ट्रेन कहाँ है, वो ट्रेन कहाँ है, तो उसका भी गाइडेंस मिलेगा, बोर्ड दिखाई देगा आपको, कुछ लोग बताएंगे अभी आने वाली है, फास्ट है, स्लो है, हर प्रकार की जानकारी जो आपको ज़रूरी है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप भूख लगी है तो आप पूछेंगे इधर कैंटीन होटल किधर है, तो भी बताएंगे, आप स्टेशन के बाहर जाना उधर एक होटल है, पानी पीना है तो बोलेंगे यहाँ पर जाना। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने पर आप प्रश्न करेंगे तो उसका सही उत्तर आपको मिलेगा। उसी तरह से आप अगर पूछेंगे कि भगवान कौन है, मुझे उनसे मिलना है, तो अपने आप आपको गाइडेंस मिलेगा, अपने आप संत लोग आपके पास आएंगे और आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, यह इसका प्रूफ है। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं और वो आपकी हर इच्छा को उत्तर दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको। आप क्या इच्छा कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है, क्या चाहते हैं आप। सभी लड़कियों को अच्छा पति चाहिए तो मन में हमेशा सोचते रहते हैं मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा पति मिले, भगवान दे देते हैं उसको उसके अनुसार। क्या चाहते हैं आप, पैसा चाहिए आपको, भगवान पैसे का उसे कमाना है, गाइडेंस देते हैं आपको। किसी को पाप करना है, किसी को खून करना है, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो उसकी बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा मतलब नहीं कि भगवान तो सोचते ही नहीं कुछ, किसी को भी सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उसका फल भी उसको मिलता है। भगवान का वाले इतना ही दिखाना चाहते हैं कि आप एक बार जो करना है कर लो, एक बार आप परेशान हो गए सब कुछ करके फिर मेरे पास आ जाओ। जब आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ आनंद नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, और जब मेरी आप मांग करोगे तब मेरी भी गाइडेंस आपको मिलेगी कैसे मिलना है मुझे। तो ददामी बुद्धि योगम तम का मतलब है कि वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपने 100 जन्म भी भक्ति किया और फिर 101वें जन्म में भी आप पूछेंगे, आगे का प्रश्न पूछेंगे, तो आपको आगे का जवाब भी मिलेगा। इसलिए कितना भी आपने साल भक्ति किया होगा, कितने भी जन्म भक्ति की होगी, या पहले दिन आज आए होंगे, या बहुत साल से यहाँ पर करते होंगे, किसी भी अवस्था में आप होंगे, भगवान के विषय में इच्छा करना मत छोड़ना। भगवान की चाह जो है, जैसे हम पैसा चाहते हैं, जैसे हम सुंदर बनना चाहते हैं, वो कैसी चाह बनी रहती है मन में। किसी को बोलना पड़ता है क्या, अच्छे कपड़े पहनो, बालों को अच्छा शैम्पू लगाओ, अच्छा सेंट लेके आओ मार्केट से, अच्छा इयररिंग लेके आओ, हाँ फिर बोलना पड़ता है किसी को। किसी को बोलते हैं क्या, माँ अच्छा पहनना आप, अच्छा ड्रेस पहनना, अच्छा दिखना चाहिए आप, किसी को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे मन में वो इच्छा बनी रहती है। वो यहाँ पर कह रहे हैं सतत युक्तानाम, वैसे ही जैसे हम अपने भौतिक इच्छाओं के बारे में सतत इच्छा करते हैं, वैसी सतत इच्छा अगर उनके बारे में करेंगे तो जीवन सफल है हमारा, और किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, ये भगवद गीता बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्चर याद करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके मन में भगवान को प्राप्त करने की सतत यानी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट सातत्यपूर्ण कहते हैं उसको, ऐसी इच्छा है तो आपका जीवन धन्य है। चाहे आप नए नए हो या पुराने हो, संत हो या ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भक्ति का मतलब है कि अपने मन में भगवान के लिए इच्छा बनाए रखना, पहले निर्माण करना और निर्माण की गई इच्छा को हमेशा बढ़ाते रहना और बनाए रखना, मेंटेन। उतना करने पर हमेशा तदामी बुद्धि योगम तम, हमेशा भगवान आपको गाइडेंस देते रहेंगे। फिर उस गाइडेंस पे दुर्लक्ष मत करना, जो गाइडेंस मिल रहा है उसको सुनना और उसको अपनाना, अमल करना, उसके ऊपर अप्लाई करना अपने जीवन में उसको, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आपकी पढ़ाई भी धन्य है, क्योंकि आपको अगर पता है कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, नॉलेज, नौकरी पे करनी है, घर कैसे चलेगा, आगे जाकर शादी कौन करेगा। ये ठीक है, इट्स नॉट बैड, कुछ तो पाप नहीं है सोचना ऐसे, लेकिन यही हमारे विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, समझो कोई अध्यापक है, कोई टेक्नीशियन है, कोई रिसेप्शन में है, सब लोग धन के लिए नौकरी कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं उसके अंदर, लेकिन केवल धन के लिए ही नौकरी कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये परिपूर्ण नहीं है और ये सफिशिएंट नहीं है। वो उससे करना क्या है आगे जाकर, उस धन का और उस जीवन का और उस प्रोफेशन का पर्पज़ यह है कि हम भगवान के साथ में जुड़ जाएं। श्रीमद् भागवत में कहा है कोई भी कार्य जो हमको भगवान को नहीं जुड़वाता है वो कार्य अपूर्ण है, और कोई भी एकदम सामान्य लगने वाला कार्य, एकदम जो तुच्छ लगता है, एकदम फालतू है, जैसे कोई बोलता है कि झाड़ू मार रहे, कोई बोले क्या है, तो सबसे कम वाला काम है ये, लेकिन नहीं, अगर वो काम भी भगवान को ध्यान में किया जाए तो वो काम भी आपको भगवान के साथ जोड़ सकता है। इसलिए कोई कार्य छोटा और मोटा नहीं होता है, कोई विद्या बड़ी हो छोटी होती नहीं है, कोई MBBS और नर्सिंग ऊपर नीचे नहीं होता है, या कोई IIT में है तो वो बहुत बड़ा है और कोई SP कॉलेज में जा रहा है तो वो छोटा है इंजीनियर, ऐसा नहीं है। अगर आप वो कार्य किसके लिए कर रहे हो उसको मन में आपके समझ में आया एक बार, कोई अगर डायरेक्टर है, कोई अगर प्रिंसिपल है, कोई अगर प्रधानमंत्री है, तो उसको समझ में आया कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस अगर भगवान के साथ जुड़ना है या उसको जोड़ देता है तो उसको प्रधानमंत्री होना भी सफल है, प्रिंसिपल होना भी सफल है और झाड़ू मारना भी सफल है। ये हमको सबको समझना जरूरी है। इसलिए हमको नर्सिंग की पढ़ाई करनी है ताकि हम चाहते हैं कि हमारे सेवा के माध्यम से, हमारी परिचर्या के माध्यम से, हमारी शुश्रूषा के माध्यम से हम अपने आप को और अपने मरीज को भगवान के साथ जोड़ दें, इतनी बढ़िया सेवा करें कि वो भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएं। यू डू सच नाइस सर्विस टू योर पेशेंट दैट ही विल बी ऑल राइट फिजिकली फ्रॉम हिज डिसीज एंड ही विल गेट इंस्पिरेशन टू गेट कनेक्टेड विथ लॉर्ड। दैट इज आवर पर्पज। जो दुनिया में बहुत लाखों लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले नर्सेस भी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब लोग नरक में जाएंगे क्योंकि वो सब लोग उस धन से बहुत बड़ा बड़ा पाप करते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, चीटिंग करते हैं, काम चोरी करते हैं, बहुत सारा गलत काम करते हैं। बड़े जितने होते हैं उतने वो बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। छोटा आदमी इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं होती है। जो बड़ा आदमी होता है वो बड़े पद पर बैठा होता है, वो बड़ा पाप कर सकता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। आपके हाथ में कितनी बड़ी तलवार है, उतने लोगों को आप काट सकते हो, उतने लोगों को जख्म कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये तलवार जो है वो केवल दुष्टों का नाश करने के लिए है, ये बंदूक जो है वो केवल गुनहगारों को मारने के लिए है, और संतों को बचाने के लिए है और धर्म को पालन करने के लिए, तो आपकी बंदूक भी परफेक्ट है। वैसे आपका ये तलवार और बंदूक की तरह आपका नॉलेज है जो भगवान की कृपा से आपको मिलने वाला है, जो आम जनता के पास नहीं होने वाला है और आपके पास होने वाला है। ये मरीज की, एक दुखी रोगी व्यक्ति की रोग मुक्त करने की शक्ति और सेवा करने की शक्ति आपको मिलने वाली है, किसी को मिली है, किसी को मिलने वाली है। अगर आप समझेंगे कि मेरे पास इतना बढ़िया भगवान ने शासन ये अवजार दिया है जिसके माध्यम से दर्द वाला आदमी मेरे पास आएगा तो उसका दर्द का निवारण हो जाएगा। आम आदमी नहीं कर सकता है, आम औरत नहीं कर सकती। अगर ये भावना आपके मन में है और आप बोलेंगे थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसे प्रोफेशन में काम दिया है जिसके वजह से मैं अभी दर्दी लोगों को दर्द निवारण कर सकता हूँ। नत्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इस श्लोक का अर्थ है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे और कोई बड़ी बड़ी प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे गौरव नहीं चाहिए, मुझे प्रेज नहीं चाहिए। मैं केवल चाहता हूँ कि जो जीव जो प्राणी, ऐसे भी नहीं कहा है कि केवल मनुष्य, ऐसा भी नहीं कहा है, प्राणी नाम जो मनुष्य दर्द में है उसके दर्द का मैं नाश कर सकूँ, दर्द को मिटा सकूँ, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। काम ही है मतलब मैं इच्छा करता हूँ दुख तप्ता नाम जो दुख में तड़प रहे हैं, प्राणी नाम आरती नाशनम, आरती यानी कि कष्ट, उसका नाश कर सकूँ मैं, उनको सुख दे सकूँ, उनको आनंद दे सकूँ, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। ये संत है, ये संत की व्याख्या है, संत केवल ऐसे ही सोचता है। तो एक नर्स के नाते आप भी संत हो, क्योंकि लोगों का दर्द जो निवारण करता है वो संत है। लेकिन अगर आपके अंदर वो भावना ही नहीं है, पता ही नहीं आपको, तो संत कैसे बनेंगे आप? तो संत बनना केवल संतों की मुक्तिदारी नहीं है कि वो वही बन सकते, हम लोग नहीं बन सकते। संत बनने का मतलब क्या है? दूसरों के लिए दर्द निवारण के लिए प्रयास करना, दूसरों का दुख नष्ट करने के लिए मेहनत करना, अपने लिए स्वार्थ नहीं रखना और भगवान के नाम पे उनका दर्द निवारण करना, भगवान की सेवा के रूप में, भगवान की इच्छा के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में उनका दर्द निवारण करना। ये भूमिका पता होना चाहिए हमको कि हम क्यों नर्स बन रहे हैं, क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। और ये सब करते हुए आपको पैसे भी मिलते जाएंगे, चिंता मत करना। अरे जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम पे दूसरों का दुख दूर करता है, उसको भगवान रोटी नहीं देंगे? उसको भगवान भूखा रखेंगे? पैसे कम देंगे उसको? इतने लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं डॉक्टर नर्स बन के, उनको भी दे रहे हैं वो। इतना बड़ा हाथी, इतनी सगा हजारों की संख्या में अफ्रीका के जंगल में और यहाँ पर रहते हैं, वो क्या 9 to 5 नौकरी करते हैं? वो क्या नर्सिंग पढ़ाई करते हैं? डॉक्टर बनते हैं क्या? पॉलिटिशियन बनते हैं क्या पैसा कमाने के लिए? उनको भी भगवान खिला रहे हैं। और आपके घर में चींटियां और कॉकरोच भी होते हैं, उनको भी भगवान खिला रहे हैं। किसको नहीं खिला रहे? सबको खिला रहे हैं भगवान। तो हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे भगवान की बहुत सेवा करेंगे तो पैसा कम मिलेगा, बहुत टाइम जाएगा ना उसके अंदर, फिर पैसा कैसे कमाएंगे ऐसा लगेगा आपको? ऐसा नहीं है। भगवान एक झटके में किसको करोड़ों रुपये दे सकते हैं और एक झटके में करोड़ों रुपये का नुकसान भी कर सकते हैं आपका, भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा क्या, मेरा कैसा होगा, ये चिंता करना ही नहीं। आप जिसके लिए आप काम करने वाले हो वो इतने महान है, केवल इच्छा से आपको मालामाल कर सकते हो। जिसकी नौकरी आप कर रहे हो भगवान की, वो हमारे CEO और कंपनियों के मालिकों की तरह, रिलायंस की इंडस्ट्री के मालिकों की तरह नहीं है वो। वो स्वार्थी और कपटी और दुष्ट नहीं है, वो बहुत प्रेमी है, सबको प्रेम करने वाले हैं, सब पर करुणा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की नौकरी हम स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद नौकरी करेंगे तो हम रोटी की चिंता करेंगे क्या? तो मूर्खता है। फिर ददामी बुद्धि योगम, तब बुद्धि दे रहे हैं, उस बुद्धि का उपयोग क्या है फिर? आपको इतना पता नहीं चल रहा है कि अरे जिसकी नौकरी कर रहे हैं वो तो मालामाल कर देगा, हमको कहीं कमी नहीं होगी किस बात की। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अगर उनकी सेवा कर रहा हूँ तो उनको पूछना नहीं पड़ेगा कि महीने के एंड में पगार मिलेगा ना, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं खुद ऐसे भक्त को पालता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, उसकी जो कमी है उसको पूरी करता हूँ, जो उसके पास है उसको बचा के रखता हूँ, भगवान का वादा है। हम सबके मन में चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा भक्तवंगन भक्ति करेंगे ना तो फिर पैसा का प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना समय देंगे तो उतना समय, लोग बोलते हैं उतना समय अगर शेयर मार्केट में लगाएंगे तो कितना कमाई होगा, वो सारा समय हम लोग भगवान की सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोग बुद्धिमान नहीं हो, आपके बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको। ऐसे व्यक्ति की नौकरी करो जिसके नौकरी में धन ही धन मिलेगा आपको, लेकिन नौकरी करो पहले उनकी सेवा करो। तो दादा में बुद्धि वगदम, वो हमारे लिए आशीर्वाद है भगवान का कि उनकी सेवा में रहेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, जो बुद्धि आवश्यक है वो मिलेगी, जो आपको मार्गदर्शन चाहिए वो मिलेगा, जो साधन चाहिए उसके लिए आपको, जो कुछ वस्तुएं चाहिए वो भी मिलेंगी, पूरा रहेगा सप्लाई आपके लिए। आप खाली बोलना है कि मुझे मेरे काम के माध्यम से आपको मिलना है, मेरे काम के करते करते ही उसको भगवान की सेवा में लगाते लगाते मुझे आपको भगवान से मिलना है, तो आपको वो गाइड करेंगे पूरी तरह से। इसी विश्वास को लेकर आप आज की पढ़ाई आप शुरू करना, और कभी भूलना नहीं, बीच में भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना। समझाओ एक दिन सुबह स्नान करने को भूल गए तो क्या होगा, सुबह ब्रश करने को भूल गए, ऐसे ब्रश ब्रेकफास्ट करने को भूल गए, हाँ तो कैसे होगा, गड़बड़ होगा ना। तो भूलना नहीं चाहिए, और कोई भूलता है क्या उसको, एटलीस्ट इंडिया में कोई भूलता नहीं है, फॉरेन में लोग ज़्यादा स्नान करने का वंस इन अ वीक गल्फ में भी वंस इन अ वीक खाली वो स्प्रे लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कोई भूलता नहीं है। उसी तरह से उनको नहीं भूलना है जो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, जो हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन का मूल है, जीवन का स्रोत है, उसको नहीं भूलना है। जिसने जीवन दिया है, जो जीवन को सवार रहे हैं, जो जीवन में आनंद दे रहे देने वाले हैं, तो जीवन उनके ही हाथ में है, उसके अधिकारी वही है, जो जीवन कभी भी छीन भी सकते हैं। ऐसे परिपूर्ण भगवान जो है उनका नित्य नियम से याद करना, उनके लिए ही कार्य करना, उनके लिए ही विद्यार्जन करना, उनके लिए ही विद्या का उपयोग करना, उनके पास ही मांगना, जो अगर मांगना है कुछ तो प्रार्थना भी उनको ही करना, शरण भी उनके ही जाना, चरणों में उनके ही रहना, तब हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपके करिकुलम में, अभ्यासक्रम में स्पिरिचुअल केयर इन नर्सिंग ये करिकुलम भी जोड़ दिया गया है, ताकि आप बाकी जो करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम जो पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है आपके समझ में आ जाए, इसलिए वो स्पिरिचुअल केयर इन नर्सिंग का करिकुलम भी आपको ऐड किया गया है, ताकि आपका यहाँ का नर्सिंग का पढ़ाई जो है वो परिपूर्ण हो, आप एक अच्छे नर्स बनो, जो निरपेक्ष हो, जिसकी सेवा प्रेमपूर्ण हो, जिसके मन में करुणा हो मरीज के प्रति, दुखी को देखकर उसको खुद को दर्द हो, दुखी व्यक्ति क्योंकि कोई अपना स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड है, कोई क्लासमेट है, उसका भी दुख देखकर आपको दुख हो, तो मरीज का दुख देखकर भी आपको दुख हो, ऐसी करुणा आपके मन में हो, स्वार्थ न हो, और आपके पास नॉलेज भी हो नर्सिंग का, अच्छी तरह से सेवा करने के लिए नॉलेज भी जरूरी है ना, और आपको इच्छा है कि अरे इसका अपेंडिक्स खराब हो गया है मुझको उसको निकालना है, तो आपका एक अच्छा सर्जन बनना भी जरूरी है ना, एक्सपर्ट होना जरूरी है, कैसे करना है पता होना चाहिए आपको। खाली इच्छा होने से क्या होता है, इच्छा होने से आपको आगे प्रयत्न भी करना पड़ेगा, तभी वो अपेंडिक्स निकाले, लिवर नहीं निकालेंगे उसका फिर उसी तरह से नॉलेज आपका नर्सिंग का आपको प्रेम से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में स्किल यानी कि कला, ड्रेसिंग करना है, किसी का आईवी लगाना है, वो कला है, वो आपको सीखना है अच्छी तरह से, स्किल कुशलता कहते हैं उसको। और तीसरा है एटीट्यूड, आपका भाव क्या है मन का, अरे क्या किटकिट है अभी 5 बज रहे फिर भी अभी आईवी लगाना बाकी है, अरे 2 ड्रेसिंग करना बाकी है, मैं जाना है मुझे पिक्चर देखने के लिए, स्वार्थ में सोचेंगे आप ऐसे, उसको कहते हैं एटीट्यूड। वो प्रवृत्ति जो है कैसी होनी चाहिए, मरीज का कल्याण सबसे पहले, प्राणी नाम आरती नाशनम कामये दुख तप्ता नाम, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मेरी जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसको मैं पूरी करूँ, तो उसके बाद सारे सुख आपके लिए खड़े हैं जीवन में। तो क्या बताया, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड ए, स्किल एस, और के नॉलेज, ए एस के, आस्क फॉर आस्क, आस्क फॉर एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, एंड साथ साथ भगवान की भक्ति की भी आस्क, आस्क फॉर डिवोशन ऑल्सो, देन योर एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज विल बिकम परफेक्ट। Thank you very much. I wish you all the best with sincere prayers and love and affection for your successful study and successful connection, strong connection with five sticks. Strong connectivity with the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Sri Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.